प्रेमाधन करुणा प्रचुर हिना प्रभु कोता गिला परमेश्वरी ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ दास रघु नाथ पतित पावा कहाँ मोरा भट जुग कहाँ कबीराज एक काल को था गिला बुरा नटराज पाषाण कोटि बो माथा अनाले पतिब गुरांग गुणेरा निधि कोता गिले पाबो ताब संगीरा संगे जे कैलो बिलास ते संग न पाया कांदे नरोत्तम दास जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर नितय गौर हरि बोल श्रील परमेश्वर दास ठाकुर तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की। तो इस भजन के शब्द इस प्रकार से हैं, जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए गोलोक धाम से, क्यों लाए? प्रचुर करुणा के कारण। हेना प्रभु कोथा गेला परमेश्वरी दास ठाकुर। तो ऐसे परमेश्वरी दास ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, और कहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी पतितों को पवित्र करने वाले हैं। कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ मेरे दोनों भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज, और एक काले यानी अनायास कहाँ चले गए हैं? गोरा नटराज नर्तकों के सम्राट श्री चैतन्य कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा अनले पसीबो, अपने माथे को मैं पत्थर में फोड़ूं अथवा अग्नि में प्रवेश करूं, गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पाबो, गुणों के समुद्र गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं? शेषब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, तो सब संगी भगवान के जिन्होंने उनके साथ बिलास किया, शेष संग ना पहिया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना प्राप्त करके नरोत्तम दास रोते हैं। तो सबसे पहले परमेश्वर दास ठाकुर के बारे में सुनेंगे। ये 12 गोपालों में से एक हैं, द्वादश गोपाल। गौर गणोदेश दीपिका में लिखा है कि परमेश्वर दास 12 गोपालों में से अर्जुन नाम के सखा हैं। अर्जुन नाम के सखा कुरुक्षेत्र के नहीं, ब्रज के, ब्रज में भी एक अर्जुन सखा हैं। तो परमेश्वर दास ठाकुर जो गौर लीला में परमेश्वर दास ठाकुर हैं, वो ब्रज लीला में कृष्ण के ब्रजवासी अर्जुन सखा है, है ना। नामना अर्जुन सखा प्राग यो दास परमेश्वर। परमेश्वर दास ठाकुर वैद्य कुल में आविर्भूत हुए। इनका निवास स्थान आंटपुर में है। इस स्थान का पहले का नाम था बिस्खाली। ये स्थान हावड़ा आमता रेल लाइन की चापा डांगा शाखा के आंटपुर स्टेशन के नज़दीक और वर्तमान राय तेज बहादुर दीवान द्वारा स्थापित श्री राधा गोविंद जी के प्राचीन मंदिर के निकट है। श्री चैतन्य ने नीच मूर्ख और पतित सभी का उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु को गौर देश जाने का आदेश दिया। तो श्री चैतन्य का जो कार्य है वो नित्यानंद प्रभु करेंगे, क्योंकि श्री चैतन्य माता के आदेश से बंधे हैं। जगन्नाथपुरी मैं उनको रहना है, माता का आदेश है, तो इसलिए श्री चैतन्य ने आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को कि गौर देश का उद्धार करो। तो श्री चैतन्य की आज्ञा पाकर नित्यानंद प्रभु ने अपने गणों को साथ में लेकर गौर देश की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ नित्यानंद प्रभु के साथ कौन कौन थे? श्री रामदास, श्री गदाधर दास, श्री रघुनाथ वैद्य, श्री कृष्णदास पंडित, श्री परमेश्वरी दास और पुरंदर पंडित, ये सब नित्यानंद प्रभु के साथ थे। रास्ते में चलते चलते नित्यानंद प्रभु के पार्षदों के विभिन्न प्रकार के भाव प्रकाशित हुए। चैतन्य भागवत में इस प्रकार लिखा है, कृष्णदास पंडित परमेश्वरी दास, पुरंदर पंडित परम उल्लास, नित्यानंद स्वरूपे जत आप्त गण, नित्यानंद संग सब कारिला गमन, पथ चलिते नित्यानंद महाशय, सर्व परिषद आगे कैला प्रेममय, सबार हाइल आत्मविस्मृति अत्यंत, कार देह कत भावना ही तार अंत। नित्यानंद प्रभु के साथ में जो उनके संगी हैं, तो उनका जो है शरीर से जो है उनकी चेतना ऊपर उठ गई है और श्री कृष्ण के प्रेम के भाव में। हाँ, नित्यानंद प्रभु के जितने निज जन हैं सब ने नित्यानंद के साथ गमन किया। मार्ग में चलते हुए नित्यानंद प्रभु ने सब पार्षदों को प्रेममय कर दिया। सब अपने आप को भूल गए। किसकी देह में कितने कितने भाव उमड़े इसका कोई अंत नहीं है। कृष्णदास परमेश्वरी, कृष्णदास परमेश्वरी दास दोई जन, गोपाल भावे हय हय करे अनुचन। कृष्णदास और परमेश्वर दास गोपाल भाव में हय हय करते हैं। हय हय जो गऊ को जो है पीछे जब चलाते हैं ना, तो हय 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 तो गऊ को जो है संकेत मिलता है कि आगे आगे चलना है, है ना। जैसे आप कहते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो, गो अहेड है, तो गऊओं का जो है जो संकेत भाषा है वो क्या है? हाय हाय, तो गौओं के पीछे जैसे पिछले जीवन में हाय हाय करते थे, तो उसी भाव में आ गए और इस शरीर की चेतना भूल गए और ब्रजवासी की चेतना में आ गए, कृष्ण के जो सखा हैं उसकी चेतना में आ गए। तो प्रत्येक क्षण गोपाल भाव में हाय हाय करते हैं। परमेश्वर दास नित्यानंद लीला पुष्टि के एक प्रधान पार्षद और नित्यानंद प्रभु के जीवन है। श्री चैतन्य भागवत के अंत खंड में इस प्रकार वर्णन है, नित्यानंद जीवन परमेश्वरी दास जार विग्रह नित्यानंद रे विलास। परमेश्वर दास नित्यानंद के जीवन है जिनके शरीर में नित्यानंद विलास करते हैं। आठपुर गांव में परमेश्वरी दास के सेवित गौर विग्रह में श्री चैतन्य प्रकाशित हुए थे, इसका प्रामाणिक वाक्य श्री चैतन्य भागवत में है। पुरंदर पंडित परमेश्वरी दास जहाँ विग्रह गौर चंद्र रे प्रकाश सत्वरे धाइया आई लेन से इच्छणे प्रभु दे की प्रेम योग्य कांधे दो ही जने। श्री पुरंदर पंडित और परमेश्वरी दास जिनके शरीर में श्री गौर चंद्र का प्रकाश है, शीघ्रता से उसी क्षण दौड़ते हुए आए और श्री चैतन्य को देखकर दोनों प्रेम से रोने लगे। गौरांग नाकाड़ी कृष्णदास दामोदर श्री परमेश्वरी बलराम विज्ञवर श्री मुकुंद दास वृंदावन आदिकारी ये समय साहसो के चले ईश्वरी। श्री गौरांग नकड़ी एक भक्त हैं, श्री गौरांग नकड़ी और श्री कृष्णदास दूसरे हैं और श्री दामोदर तीसरे, श्री परमेश्वरी चौथे जिनका आतुर्भाव और विद्वान बलराम जी पांचवें और वृंदावन दास छठवें, ये सभी ईश्वरी जहानव देवी के साथ आनंद से चल रहे हैं। नित्यानंद शक्ति श्री जहानव देवी के खेतरी महोत्सव में जाते समय परमेश्वरी दास भी उनके साथ थे, ऐसा वर्णन भक्ति रत्नाकर में पाया जाता है। श्री परमेश्वरी दास ठाकुर जहानवा माता के साथ ब्रजधाम गए और जहानवा माता की कृपा से ये वृंदावन में गोपीनाथ जी के साथ श्री राधिका का मिलन दर्शन करके प्रेमाप्लावित हो गए। जहानवा माता के आदेश से इन्होंने आठपुर में श्री राधा गोपीनाथ की विग्रह प्रतिष्ठा की। तारे आठपुर ग्राम शीघ्र कारी जाह तथा राधा गोपीनाथ सेवा प्रकाश ईश्वरी आज्ञा है परमेश्वरी दास राधा गोपीनाथ सेवा कारी ला प्रकाश। ये भक्ति रत्ना करके पया रहे हैं। जहानवा माता परमेश्वरी दास से कहती हैं कि आप जल्दी आठपुर ग्राम में जाओ, वहाँ श्री राधा गोपीनाथ जी की सेवा की प्रतिष्ठा करो। परमेश्वर दास ने श्रीमती जहानवा देवी की आज्ञा से ही राधा गोपीनाथ की सेवा को स्थापित किया। परमेश्वर दास ठाकुर कुछ समय के लिए खड़धा में और वृंदावन में आते समय जिला गरलगाछा ग्राम में रहे। जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर खड़धा में आए तो उन्होंने उन्हें पुरी के रास्ते का विवरण बताया। नरोत्तम दास ठाकुर को पुरी के रास्ते का विवरण बताया। परमेश्वर दास ठाकुर के स्मरण से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। हरि बोल। श्री परमेश्वर दास ठाकुर के स्मरण से ही कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, इस प्रकार की महिमा श्री चैतन्य चरितामृत में है। परमेश्वरी दास नित्यानंद के शरण कृष्ण भक्ति पाए तारे जे कर स्मरण। अर्थात परमेश्वर दास जी ने नित्यानंद जी की एकमात्र शरण ली है, जो इनका स्मरण करेगा वो कृष्ण भक्ति प्राप्त करेगा। हरि। परमेश्वर दास ठाकुर की अलौकिक शक्ति थी। एक समय की बात है, सुनिए क्या एक समय की बात है। हुगली जिले के श्री रामपुर के निकट आकना महेश नामक गांव में श्री कमलाकर पिपलाई के निवास स्थान पर हरिनाम संकीर्तन हो रहा था और परमेश्वर दास ठाकुर वहां प्रेम में प्रमत्त होकर नृत्य कर रहे थे। उस उच्च संकीर्तन ध्वनि और नृत्य को देखकर कई पाखंडियों के शरीर में जलन होने लगी। उनको बुखार इसीलिए होता है, भक्तों का अगर कीर्तन होता है और आनंद होता है तो उनको बुखार होता है, तो उनके शरीर में जलन होने लगी जो वहाँ कीर्तन स्थान को कलंकित करने के लिए आए थे। तो कीर्तन स्थान को कलंकित करने के लिए आए थे कि ज़्यादा इनकी निंदा हो और इनका कीर्तन तो बहुत हो रहा है, तो उनको बहुत ईर्ष्या हो रही। उन्होंने संकीर्तन स्थल पर एक मरा हुआ सियार फेंक दिया इससे क्या होगा, बाधा पड़ेगी, सब लोग भागेंगे, कीर्तन जो है खंडित हो जाएगा। इस प्रकार से मरा हुआ सियार फेंक दिया, किंतु वैष्णव प्रवर परमेश्वर दास ने संकीर्तन बंद नहीं किया, उनके संकीर्तन के प्रभाव से मरा हुआ गीदड़ भी जीवित होकर कीर्तन करने लगा। इस घटना को देखकर सभी विस्मित और आनंद में निमग्न हो गए। वैष्णव वंदना में लिखा है, परमेश्वरी दास बंदी वैसा वधाने श्री गाले लो यान नाम संकीर्तन स्थाने। अर्थात परमेश्वर दास जी की मैं सावधानी पूर्वक वंदना करता हूँ, उन्होंने तो मरे हुए गीतल को भी जिंदा करके उससे संकीर्तन करवा दिया। तो ये जो है वंदना है, ये लिखा हुआ है वंदना में परमेश्वर दास। और आज इनका तिरुभाव दिवस है, हमारे वैष्णव कैलेंडर में आविर्भाव दिवस नहीं आता, इनका हाथ का निशान लगा हुआ है, आविर्भाव दिवस नहीं आता, साल में केवल एक ही दिन आता है इनको याद करने का। तो आज बहुत हमें सावधानी से इनका स्मरण करना चाहिए और इनके स्मरण का लाभ उठाना चाहिए। श्री मंदिर के ठीक सामने दो वृक्ष हैं, जिनमें एक बकुल वृक्ष है, दूसरा कदंब वृक्ष है, और दोनों वृक्षों के बीच में परमेश्वरदास ठाकुर की समाधि है, और समाधि के ऊपर तुलसी मंच सुशोभित है। परमेश्वरदास ठाकुर के समय जो दो बकुल वृक्ष थे, उन्हीं की शाखाओं से ये वृक्ष उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। इन वृक्षों के दातून से इन वृक्षों की उत्पत्ति है। कदम के वृक्ष में प्रत्येक वर्ष एक फूल होता है, जिससे श्री विग्रह की चरण पूजा होती है। वैसाखी पूर्णिमा तिथि को श्रील परमेश्वरदास ठाकुर का तिरुभाव उत्सव संपन्न होता है। आज वैसाखी पूर्णिमा है, श्रील परमेश्वरदास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। परमेश्वरदास ठाकुर के बाद अब हम सुनेंगे श्री कृष्ण का जल विहार। ये राधा कुंड महिमा माधुरी में से एक घटना है। राधा कुंड में जल केली कृष्ण करते थे, जल विहार करते थे। तो ये राधा कुंड की लीला है। वृंदा देवी श्री राधा माधव और गोपियों की अगवानी करते हुए उन्हें राधा कुंड के शीतल जल में लीला विलास का आनंद लेने हेतु वहां पर लाती हैं, वृंदा देवी लाती हैं। यद्यपि हंस, कोयल, तोते, शुक और चातक जैसे पक्षियों की ध्वनियां भिन्न भिन्न ऋतुओं में सुनाई पड़ती हैं, परंतु कृष्ण की प्रसन्नता हेतु ये सभी पक्षी साथ साथ एक स्वर में राधा कुंड के तट पर मधुर गान करते हैं। ये सब पक्षी एक साथ करते हैं। राधा कुंड के तट पर हर्ष ध्वनि करती दो विरोधी टोलियां विद्यमान हैं, दो विरोधी दल हैं, और दोनों हर्ष प्रकट कर रहे हैं। क्यों हर्ष प्रकट कर रहे हैं? दोनों दल सोच रहे हैं कि हमारे दल की विजय होगी। एक ओर श्री राधा के समर्थक सखियां हैं, और दूसरी ओर श्री कृष्ण के समर्थक उनके सखा हैं। तो वो राधा रानी को बोलती हैं जिंदाबाद, और कृष्ण के लिए कहते हैं जिंदाबाद। वृंदा धनिष्ठा नांदी मुखी एक मंडप में संपूर्ण गतिविधियों को देख रही हैं, उनका मंडप अलग है। और जब गोपियां श्री कृष्ण को परास्त करती हैं, तो प्रफुल्लित होकर के जय राधे जय राधे पुष्पों की पंखुड़ियां बरसाती हैं, और जय राधे जय राधे। कृष्ण पराजित होते हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं सखियां। और एक दूसरा मंडप है, सुबल मधुमंगल कुंदलता विराजमान है, जब कृष्ण की विजय होती है तो फूलों की वर्षा करते हुए जय कृष्णा इस प्रकार से हर्षनाद करते हैं। अब कृष्ण और गोपियां फिर से युद्ध करते हैं। सर्वप्रथम शालीनता से एक दूसरे पर जल के छींटे उछालते हैं, आराम से, अच्छा लगे, आनंद आए, जल के छींटे उछालते हैं। फिर जैसे उनका उत्साह बढ़ता है तो भीषण प्रतियोगिता हो जाती है, तो फिर भयानक हो जाती प्रतियोगिता। दोनों दल अत्यंत उग्रता पूर्वक एक दूसरे पर जल की बौछार करते हैं। लाल रंग के कमल पुष्पों से निर्मित धनुष जैसी गोपियों की हथेलियां, गोपियों के हृदय धनुष जैसी हैं, जल निर्मित बाणों की धारा छोड़ती हैं, जल की जल के बाण छोड़ती हैं गोपियां कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण के ऊपर आघात करती हैं गोपियां। और कृष्ण है शेर की तरह अत्यंत बल का प्रयोग करके बर्बरता पूर्वक जल की बाढ़ डाल देते हैं, एकदम जल की बाढ़ से सब गोपियों को परास्त कर देते हैं। गोपियां कृष्ण का प्रहर सहन नहीं कर सकें, विजय की सब आस्थाओं को त्याग कर पराजय स्वीकार करते हुए अपने सिर झुका लिए और अपने मुखों को हाथों से ढक लिया। हार गईं, हार गईं। कृष्ण की विजय को देखकर मधु मंगल किनारे खड़े होकर के चिल्लाते हैं, हे सखा तुम जीत गए, तुम जीत गए। देखो अभिमानी ये सखियां रत्न आभूषणों को छिपाकर भागने का प्रयास कर रहे हैं, शीघ्रता पूर्वक इनके आभूषण छीन लो और मुझे दे दो, मैं मथुरा में बेचकर मिठाइयां खरीदूंगा। अभी जा रहा हूं मथुरा मिठाइयां खरीदने के लिए और फिर तत्काल वापस भी आऊंगा। बटु की कथन को सुनकर ललिता बहुत कुपित हुई। ये बटु जो है बहुत दुष्ट है, ललिता बहुत कुपित हुई और चिल्लाई, दुष्ट मूर्ख थोड़ी प्रतीक्षा करो, हम बाद में अवश्य प्रतिशोध लेंगे। इसी समय कृष्ण युद्ध के का जो है इनाम पाने की आशा करते हैं और गोपियों का युद्ध में रुचि समाप्त हो गई, शिथिल पड़ गई, उनके केश वस्त्र परिधान गलमालाएं ढीली हो गईं, अपनी प्रिय सखियों को शक्तिहीन और निस्तेज देकर अपनी विजय पर मुस्कुराते कृष्ण को देखा तो राधा रानी को जो है अब उन्होंने निश्चय किया कि आज जरूर बदला लेंगी। उनकी प्रिय सखियां जो है निस्तेज हैं, शक्तिहीन हैं और कृष्ण जो है विजय अपनी विजय पर मुस्कुरा रहे हैं, तो राधा ने गर्वीले विजेता को परास्त करने का निर्णय कर लिया, कि संकल्प कर लिया। तो फिर राधा रानी की क्रोधावेशपूर्ण आक्रमण से स्तब्ध हुए कृष्ण अचेत अवस्था में पहुंच गए। ललिता सखी बोली कि हे राधा अब विराम लो, अब विश्राम लो, कृष्ण का मुकुट गिर गया है, उनके कौस्तुभ मणि ने जो है अपना स्थान छोड़ दिया है और कृष्ण के मस्तक से तिलक भी धुलकर मिट गया है, गले की मालाएं फटकर चिथड़े चिथड़े हो गई हैं और उनके कानों के कुंडल कंपित हो रहे हैं, भयाक्रांत होकर के कंपित हो रहे हैं। हे सखी कृष्ण बहुत शोक मग्न हैं, उन्हें अधिक प्रताड़ित ना करो। तो अंत में विजय किसकी हुई? श्रीमती राधा रानी की। हरि वो। और एक तो जल विहार, दूसरा क्या है? झूलन बिहार। झूलन बिहार, तो झूलन बिहार की जो कथा है ये एक पुस्तक है भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने लिखी है श्रीमती राधा रानी के विषय में, तो इससे मैं पढ़ के सुनाऊंगा। भगवान के महान भक्त होने के कारण नारद मुनि नियमित रूप से श्रीमती राधा रानी के दर्शन करने जाते थे। नारद के बार बार मिलने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हुए श्री कृष्ण राधा रानी को सतर्क करते हैं कि नारद मुनि के साथ बहुत घनिष्ठता के विषय में सतर्क रहना। क्यों? क्योंकि ये लोगों के बीच झगड़ा करवाने और भड़काने में बहुत निपुण हैं। कृष्ण को आशंका थी नारद उनके और श्रीमती राधा रानी के बीच में भी संशय उत्पन्न कराकर दोनों के बीच में झगड़ा करवा सकते हैं, बहुत चालाक हैं। किंतु राधा रानी कृष्ण की बातों को गंभीरता से ग्रहण नहीं करती थी। क्या बात करते हो, इतने अच्छे भक्त हैं वो, आपके इतने अच्छे भक्त हैं, सोच रही थी उनके और कृष्ण के बीच प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि कोई उनके बीच में किसी तरह मतभेद नहीं करा सकता है। कौन सोच रही थी? राधा रानी सोच रही। कृष्ण बोले, ये तो स्पष्ट है कि तुम हमारी चेतावनी की परवाह नहीं करती हो, लेकिन एक दिन तुम नारद मुनि के संग का परिणाम अवश्य पाओगी। एक बार नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए ब्रज भूमि का दर्शन करने आए। नारद मुनि के वीणा वादन से विमुग्ध होकर श्री कृष्ण उन्हें एक वरदान देना चाहते हैं। भाई वरदान मांगो। नारद मुनि ने कहा, अभी मुझे वरदान प्राप्ति की कोई आकांक्षा नहीं है, हे प्रभु कृपा करके अपने इस वरदान को भविष्य के लिए बुक कर दीजिए, भविष्य के लिए बुकिंग कर दीजिए मेरे वरदान की, जब जरूरत होगी तो मैं आपसे वरदान मांगूंगा। जब भी मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी मैं आपके लिए आपसे इसके लिए प्रार्थना करूंगा। एक दिन सभी सखियां ललिता कुंड के निकट झूलन बिहार का आयोजन कर रही हैं। एक झूला तैयार करके उसे बहुत सुंदरता से सजाया गया और कृष्ण के साथ सभी सखियां झूलन बिहार के लिए तैयार थीं, किंतु उस स्थान पर अभी तक श्रीमती राधा रानी नहीं पहुंच पाई। सभी लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं क्योंकि उनके बिना झूलन बिहार प्रारंभ नहीं हो सकता। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंच गए। मुनि ने जिज्ञासा की, यहाँ कैसा आयोजन चल रहा है, कौन सा शुभ अवसर है? सखियों ने उत्तर दिया, हमने राधा व कृष्ण के लिए झूलन बिहार का आयोजन किया है, सब कुछ तैयार है, केवल राधा रानी अभी यहाँ नहीं पहुंची हैं, हम लोग उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। किसने कहा? सखियों ने कहा। नारद मुनि श्री कृष्ण के पास जाकर बोले, प्रभु क्या आपको याद है, एक दिन आप मुझे एक वरदान देना चाहते थे और मैंने आपसे कहा था कि बाद में आवश्यकता पड़ने पर मांग लूंगा। आज मेरी एक विशेष इच्छा है, यदि आप मेरी इस इच्छा को पूरा करें तो मैं बहुत कृतार्थ हो जाऊं, आपका बहुत आभारी हो जाऊं। कृष्ण ने कहा, हाँ नारद मुझे अपना वचन याद है, अवश्य मैं आपकी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। अभी मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? नारद मुनि, आपको और ललिता को एक साथ झूलन पर झूलते हुए दर्शन करना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, बस इसका तो बहुत आसानी से व्यवस्था की जा सकती है, श्री राधा को आने में विलम्ब हो रहा है, तब तक मैं और ललिता एक साथ झूला झूल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर ललिता कृष्ण के साथ झूला नहीं झूलना चाहती थी, वे तो केवल अपनी प्रिय सखी राधा को ही कृष्ण के साथ झूला झूलते देखना चाहती हैं। ये चेतना है सखी की। ललिता को संकोच करते देखकर कृष्ण उनका हाथ पकड़कर बलपूर्वक अपने साथ झूलन पर बैठा लिया और सखियां उन्हें झुलाने लगी। ललिता कृष्ण को एक साथ झूलते हुए देखकर नारद मुनि और समस्त गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। अचानक नारद मुनि उस स्थान को छोड़कर श्रीमती राधा रानी के घर चले गए। नारद मुनि को अपनी इच्छानुसार भ्रमण करने की स्वतंत्रता थी, कहीं भी जाए सीधे जा सकते हैं। सीधे राधा रानी के कक्ष में पहुंच गए जहां वे झूलन बिहार में भाग लेने के लिए श्रृंगार कर रही। नारद मुनि राधा रानी से बोले, यहाँ आप क्या कर रही हैं? राधा रानी ने उत्तर दिया, मैं श्री कृष्ण के साथ झूलन बिहार में भाग लेने के लिए तैयारी कर रही हूँ, ललिता कुंड के निकट हमारी सखियाँ झूलन की व्यवस्था कर रही हैं। नारद मुनि बोले, आप झूलन बिहार की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं उत्सव पर इस समय क्या हो रहा है? कृष्ण तो वहाँ इस समय ललिता के साथ झूलन बिहार कर रहे हैं। राधा रानी को थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ, ललिता कृष्ण के साथ झूलन बिहार कर रही हैं। नारद बोले, ठीक है तो आप स्वयं जाकर देख लो वहां क्या हो रहा है। राधा रानी तत्काल ललिता कुंड की ओर गईं और कुछ दूर से ही उन्होंने ललिता कृष्ण को एक साथ झूला झूलते हुए देखा। राधा रानी अत्यंत क्रोधित होकर तेजी से उस स्थान को छोड़कर चली गई। उसी बीच कृष्ण और समस्त सखियां राधा रानी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु उस स्थान पर उपस्थित नहीं हुई। राधा कृष्ण समझ गए निश्चय किसी समस्या के कारण उनको विलंब हो गया है, सम प्रॉब्लम। उन्होंने नारद मुनि से जिज्ञासा करने की बात सोची, किंतु देखा नारद मुनि गायब। कृष्ण समझ गए नारद ने कुछ किया है, तुरंत राधा रानी को स्वयं ढूंढने के लिए चल दिए। कुछ समय बाद कृष्ण एक कुंज में राधा रानी को क्रोध अवस्था में बैठकर रोते हुए देखते हैं। वे उन्हें शांत कराने की चेष्टा करते हैं, किंतु श्री राधा उनके किसी बात को सुनना नहीं चाहती हैं। कृष्ण बोले, राधा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो हम तुम्हारे लिए कितनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम क्यों यहाँ अकेले बैठकर रो रही हो? अत्यंत क्रोधित होकर वे बोली, तुम्हें मेरी क्या आवश्यकता है, आप तो ललिता के साथ झूला झूल रहे थे, उनके साथ खुश रहो, वहां मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण राधा से जिज्ञासा करते हैं, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं ललिता के साथ झूला झूल रहा हूँ? राधा रानी बोली, मैं नारद मुनि के द्वारा ये बात सुनी है और अपनी आंख से देखी भी है। कृष्ण समझ गया ये परिस्थिति नारद मुनि ने उत्पन्न की है। उन्होंने राधा रानी को बताया, जरा देखो किस प्रकार नारद मुनि तुम्हारे साथ छल करते हैं, मैं एक बार नारद मुनि को एक वरदान देने के लिए वचन दिया था, आज भी हमारे पास आकर वर प्राप्ति की अभिलाषा करते हुए बोले कि मैं आपका ललिता के साथ झूला झूलते हुए दर्शन करना चाहता हूँ, चूंकि आपको आने में विलम्ब हो रहा था इसलिए नारद मुनि को प्रसन्न करने के लिए मैं और ललिता एक साथ झूला झूल रहे थे। हमारे साथ झूला झूलने की ललिता की पहले कोई इच्छा नहीं थी, किंतु केवल नारद को प्रसन्न करने के लिए मैंने ललिता को बलपूर्वक विवश किया, किंतु हम दोनों को झूला पर बैठा कर तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारे पास आकर सूचना भी दे दी। हाँ मैं तो तुम्हें पहले से ही नारद मुनि के विषय में चेतावनी देता था, बार बार चेतावनी देता था, कि उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध मत जोड़ना, वे लोगों का एक दूसरे से मतभेद कराने में बहुत निपुण हैं। अब तो स्वयं नारद जी की कीर्ति देख ली ना। कृष्ण राधा रानी को सचेत कराते हुए बोले, अब भविष्य में कभी नारद मुनि पर विश्वास नहीं करना। राधा रानी कृष्ण की बात सुनकर और सब वृतांत जानकर मुस्कुराई, फिर दोनों एक साथ झूलन विहार के लिए ललिता कुंड की ओर चल पड़े। हरि बोल। माधवेंद्रपुरी का चरित्र बहुत विस्तृत है, कुछ चरित्र में इसमें से पढ़ के सुनाऊंगा। गौड़ी वैष्णव चरितामृत में से श्री चैतन्य के प्रकट होने से पूर्व अपने नित्य पार्षदों जैसे श्री अद्वैत आचार्य, श्री जगन्नाथ मिश्र, सची माता, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी को पृथ्वी पर भेजा। भगवान ने अपने पहले सीनियरों को भेजा, भगवान से सीनियर हैं ये सब, माधवेंद्रपुरी, जगन्नाथ मिश्र, सची माता। माधवेंद्रपुरी ने मध्य संप्रदाय के आचार्य लक्ष्मीपति तीर्थ से दीक्षा ग्रहण की, उनके अनेक शिष्य थे, किंतु श्री अद्वैत आचार्य और ईश्वरपुरी उनमें प्रमुख थे। बंगाल और श्री क्षेत्र मंडल के समस्त वैष्णव किसी न किसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी से संबद्ध थे। श्री चैतन्य के आने के उपरांत उनके अनेक शिष्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित हो गए। माधवेंद्रपुरी की देह पूर्णतया दिव्य प्रेममयी थी, उनके अनुयायी भी ऐसे ही थे। उन्होंने असाधारण भगवत प्रेम प्रदर्शित किया। एक घन यानी श्यामल बादल को देख करके मूर्छित होकर गिर जाते थे। कौन? माधव। क्यों? कृष्ण की याद आती थी, घन श्याम। दिन रात कृष्ण प्रेम का अमृत पी करके वे जो है मूर्छित रहते थे। ये वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है चैतन्य भागवत में। भारत भूमि का व्यापक भ्रमण करने के बाद इन्होंने वृंदावन और उड़ीसा में अपना जीवन व्यतीत किया। इन्होंने वृंदावन की पुनः स्थापना का कार्य प्रारंभ किया, जिससे श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी ने और आगे गति प्रदान की। प्रारंभ कार्य माधवेंद्रपुरी ने किया। माधवेंद्रपुरी को ही गोपाल ने स्वप्न दिया कि मुझे निकालो, और मंदिर की स्थापना की, तो पहला मंदिर बना वृंदावन में। भारत भूमि का अच्छा ये हो गया। कुंज कुंज विचरण करके राधा कृष्ण के मधुर वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए माधवेंद्रपुरी भाव बेबल होकर मूर्छित हो जाते थे। श्री गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वे कुंज में ढके हुए हैं और उनको बाहर निकाला जाए और गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित किया जाए। माधवेंद्रपुरी ने अन्नकूट अर्पण कर गोपाल का प्रतिष्ठापन महोत्सव मनाया। यह अन्नकूट महोत्सव जो गोवर्धन पूजा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के वृंदावन क्षेत्र में और विश्व भर में वैष्णवों का एक प्रमुख उत्सव है। माधवेंद्रपुरी ने मधु संप्रदाय में माधुर्य भाव की धारणा प्रवर्तित की। जो माधुर्य भाव माधवेंद्रपुरी के पहले नहीं था, मधु संप्रदाय में ऐश्वर्य भाव था, माधुर्य भाव नहीं था। माधुर्य भाव का प्रवर्तन किया माधवेंद्रपुरी ने। माधवेंद्रपुरी ने प्रेम भक्ति का बीज बोया और श्री चैतन्य मधुर फल मधुर फलों की वृष्टि करने वाले विराट वृक्ष माने जाते हैं। बीज है माधवेंद्रपुरी और श्री चैतन्य उसी के वृक्ष हैं जिन्होंने प्रेम फल जो है उत्पन्न किए और वितरण किए। इन्होंने विरह भाव का साधन किया। मधु संप्रदाय की इनकी शाखा इस भगवत प्रेम द्वारा अपनी विशिष्टता दिखलाती है। ये मधु गौड़ी संप्रदाय कहलाती है। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य ने विरह भाव की अत्यंत गहन दशा दिखाई। इसमें असीम वृद्धि हुई जब महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत दशम स्कंद, कृष्ण करणामृत, गीत गोविंद और चंडीदास और विद्यापति की प्रेम पदावली सुनी। महाप्रभु का विरह इनकी परम गुरु माधवेंद्रपुरी द्वारा एक श्लोक से आरंभ हुआ। माधवेंद्रपुरी का एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। ऐ दीन दयार्द्रनाथ हे मथुरानाथ कदावलोक्य से हृदयम त्वर्दालोक्य कातरम दैत भ्राम्यति किम करोम्यहम्। इसका अर्थ है, हे दीनों के प्रति दया दिखाने वाले प्रभु, हे स्वामी, हे मथुरापति, मुझे आपका दर्शन कब होगा? आपके दर्शन ना कर पाने से मेरा हृदय क्षुब्ध हो रहा है। हे प्रिय, मैं अत्यंत बेबल हूँ, अब मैं क्या करूँ? ये राधा रानी का भाव। कृष्णदास कविराज कहते हैं, जिस प्रकार कौस्तुभ मणि समस्त रत्नों से अधिक कीमती है, उसी प्रकार ये श्लोक समस्त काव्यों में अनमोल है। ये श्लोक श्रीमती राधा रानी ने स्वयं स्वरित किया है। राधा रानी ने ये श्लोक की रचना की है। श्याम सुंदर के प्रति राधा की करुण पुकार जो है ये इस श्लोक में है। राधा रानी की कृपा से यही श्लोक माधवेंद्रपुरी के मुख से निकला। इस श्लोक के कुछ शब्दों का उच्चारण ही महाप्रभु के प्रेम के कपाट विदीर्ण कर देता और वे अचेत अवस्था में भूमि पर गिर जाते। आई दीन इस श्लोक के जो है दो शब्द है, आई दीन इतना कह करके श्री चैतन्य पूरा श्लोक भी नहीं बोल पाते थे। उसी में ही उनका प्रेम के अश्रु जो है विरह के अश्रु बहने लगते थे। श्री कृष्ण से तीव्र वियोग का अनुभव करते हुए माधवेंद्रपुरी इस जगत से प्रयाण करते समय इस श्लोक का निरंतर उच्चारण करते रहे। कृष्णदास कविराज का कहना है कि इस श्लोक के माध्यम से माधवेंद्रपुरी भक्तों को सिखाते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण से विरह के तीव्र भाव के द्वारा श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। गौड़ी वैष्णव मानते हैं कि श्लोक विरह भाव के सार को प्रकट करता है। गौड़ी संप्रदाय सिखाता है कि विरह भाव में राधा कृष्ण की आराधना भक्ति की उच्चतम अवस्था है। विरह के भाव में आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भक्त श्री कृष्ण के विरह में समग्र जगत को शून्य शून्य मानता है। माधव के बिना एक क्षण एक युग के बराबर प्रतीत होता है। श्री चैतन्य सदैव इस उन्माद महाभाव में तैरते थे। इस श्लोक में माधवेंद्रपुरी इसी प्रकार का भाव प्रकट करते हैं। गौरी वैष्णवों का मानना है कि श्री गौरांग द्वारा उनकी प्रकट लीला के पर्यंत प्रदर्शित प्रेम धारा माधवेंद्रपुरी से प्रारंभ हुई, तब ये ईश्वरपुरी के माध्यम से प्रवाहित हुई और श्री चैतन्य के जिन्होंने श्री चैतन्य के गुरु की भूमिका निभाई। माधवेंद्रपुरी की समाधि उड़ीसा के रेमणा क्षेत्र में क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर के समीप है। श्री माधवेंद्रपुरी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। राधा रमन का भी आज आविर्भाव दिवस है। राधारमण जी गोपाल भट्ट गोस्वामी के अर्चा विग्रह हैं। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी उत्तर भारत में शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए यात्रा पर निकले, गंडकी नदी पर आप एक दिन स्नान कर रहे थे। सूर्य उपासना के लिए जो ही आपने अंजलि में जल लिया, गंडकी नदी में खड़े कमर तक खड़े हैं और अंजलि में जल लिया सूर्य उपासना के लिए, एक अद्भुत सुंदर दामोदर शिला इनकी अंजलि में आ गई। इसी प्रकार दूसरी बार अंजलि में छोटी बड़ी शालिग्राम शिलाएं आई, कुल मिलाकर के 12 शिलाएं। वे उन्हें लेकर ब्रज में लौट आए। यहाँ केसी घाट के निकट यमुना किनारे आप अति भाव विभोर होकर शालिग्राम की पूजा करने लगे। वृंदावन यात्रा करते हुए एक सेठ जी ने वृंदावन के समस्त श्री विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भेंट किए। ये पिछले दिन की बात है, नरसिंह चतुर्दशी के दिन वो सेठ जी आए थे तो जहाँ जहाँ भगवान की पूजा हो रही है तो उन्होंने वस्त्र आभूषण भेंट किए। गोपाल भट्ट जी को भी उसने वस्त्र आभूषण दिए, परंतु शालिग्राम जी को कैसे धारण कराएं ये बात सोचते सोचते इनको रात भर नींद नहीं आई। वस्त्र आभूषण ले लिए, उस समय सोचा था कि देखा जाएगा कैसे इनका प्रयोग करना है, सोचेंगे देखेंगे, ले लिए, मिल रहे हैं तो ले लिए, है ना। लेकिन अब सोच रहे हैं अब कैसे शालिग्राम शिलाओं को जो है कैसे धारण कराएं वस्त्र आभूषण। रात भर नींद नहीं आई और क्या प्रार्थना कर रहे थे कि आज के दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन आप खंभे से प्रकट हुए तो शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हो। तो इस तरह से रात भर रोते रहे। सवेरे ये देखकर इनके आश्चर्य आनंद की सीमा न रही कि शालिग्राम दामोदर शिला जो थी त्रिभंग ललित दो भुजाओं के मुरलीधर मधुर मूर्ति श्याम रूप में विराजमान है। हरि बोल। और देखिए वस्त्राभूषण पहले थे तो भगवान ने उतना बड़ा रूप धारण किया जो उन वस्त्राभूषण के लिए फिट हो। वैसे तो वस्त्र हमेशा बनाए जाते हैं शरीर के जो अनुसार हो, शरीर की नाप के अनुसार, लेकिन भगवान ने अपना शरीर जो बनाया वो वस्त्र आभूषणों के अनुसार बनाया कि उनको पहनना है, उस साइज का उन्होंने अपना शरीर प्रकट किया। श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को बुलाया, ये सीनियर हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी के सीनियर हैं रूप सनातन गुरुजन, इनको बुलाया और श्री विग्रह का महा अभिषेक महोत्सव मनाया। आज के दिन ये दिन था वैसाखी पूर्णिमा सन 1542, उसी दिन से ये श्री विग्रह राधा रमन जी के नाम से विख्यात हुए। प्रकट काल से लेकर आज तक श्री राधा रमन जी वृंदावन में ही विराजमान है, ये कहीं नहीं गए। औरंगजेब के अत्याचार के समय ने वृंदावन में ही गुप्त रूप से सुरक्षित कर लिया गया, ये वृंदावन से बाहर नहीं गए। देवबंद ग्राम के एक ब्राह्मण बालक श्री गोपीनाथ को आपने दीक्षा दी, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दीक्षा दी और राधा रमन जी की सेवा का भार सौंप दिया, जो श्री गोपीनाथ पुजारी के नाम से विख्यात हुए। इनके छोटे भाई श्री दामोदर ने गोपीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की और राधा रमन जी की सेवा पूजा को आगे बढ़ाने के लिए गोपीनाथ जी की आज्ञा से विवाह किया। उनकी वंशज आज पर्यंत राधा रमन जी की सेवा करते चले आ रहे हैं। श्री राधा रमन आविर्भाव तिथि महा महोत्सव की। श्रीनिवास आचार्य का आज क्या है आविर्भाव, इसमें से मैं पढ़ूंगा। कटवा में गौरांग महाप्रभु का सन्यास उत्सव देखने के बाद चैतन्य दास, इनके पिता हैं चैतन्य दास, तो कटवा में श्री चैतन्य का सन्यास उत्सव देखने के बाद चैतन्य दास और उनकी गर्भवती पत्नी श्री चैतन्य से भेंट करने जगन्नाथपुरी गए। श्री चैतन्य ने भविष्यवाणी की, शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम होगा श्रीनिवास। तो श्री चैतन्य ने बालक का नामकरण पहले कर दिया, जन्म से पहले नामकरण कर दिया, इसका नाम होगा श्रीनिवास। श्री चैतन्य ने कहा कि श्रीनिवास के माध्यम से रूप और सनातन के सब भक्ति शास्त्रों का वितरण होगा। श्रीनिवास आचार्य अपने पिता के परलोक से धारने के पश्चात श्रीनिवास गौरांग महाप्रभु के शेष पार्षदों के दर्शन के लिए कटवा गए, नवदीप गए, जगन्नाथपुरी गए। उन्होंने श्रीनिवास को शुभ आशीर्वाद दिए और अमूल्य उपदेश दिए। गौरांग प्रेम में इनकी निमग्नता देखकर वे जान गए कि गौर शक्ति का साक्षात स्वरूप हैं ये श्रीनिवास आचार्य। इन्होंने वृंदावन आकर 12 वनों की यात्रा की और गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण की। श्रीजीव गोस्वामी ने इन्हें संपूर्ण सिद्धांत की शिक्षा प्रदान की, गौड़ी ग्रंथों का जो है अध्ययन कराया। इनकी विस्तृत विद्वत्ता को पहचानते हुए जीव गोस्वामी ने इनको श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया, श्रीनिवास आचार्य। श्री जीव गोस्वामी की आज्ञा पर श्रीनिवास और इनके दो मित्र श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर ने दिव्य ग्रंथ वितरण की प्रथम मंडली का मार्ग प्रशस्त किया, ब्रजवासी संकीर्तन मंडली की जय। संकीर्तन भक्त, तीन संकीर्तन भक्त हैं। इन्होंने वृंदावन के गोस्वामी ग्रंथों की एक बैलगाड़ी भरी और बंगाल और उड़ीसा में सर्वत्र उनका वितरण किया। श्रीनिवास आचार्य ने अनेक भक्तों जैसे रामचंद्र कविराज और भी अन्यों को दीक्षा दी और भक्तिमय गीतों की रचना की। षड़ गोस्वामी अष्टकम इनका ही लिखा हुआ है और एक विशिष्ट कीर्तन की शैली प्रवर्तित की। कीर्तन में अग्रता करते हुए कभी कभी इतने दीर्घ काल तक कीर्तन करते रहते कि इनका कंठ गदगद हो जाता था। प्रचार और लेखन के कार्यकलापों के अलावा श्रीनिवास आचार्य रागानों का भजन भी करते थे। रागानों का भजन ब्रज के नित्य निवासियों की जो है मानसिक आराधना है। मानसिक सेवा करते समय इन ध्यान अवस्थाओं से पुनः बाहरी चेतना पर लौटने पर ऐसी सामग्रियां प्रकट होती हैं जो आध्यात्मिक जगत की होती थीं। एक बार श्रीनिवास ने गौरांग प्रभु को अपने मन में एक रत्न सिंहासन पर बिठाया। मानसिक सेवा ऐसे ही होती है, जो चीज़ें कहीं ना मिलें मन के द्वारा वो आप पैदा कर सकते हैं मन के द्वारा। तो मन के द्वारा जो है उन्होंने रत्नों का सिंहासन बनाया और श्री चैतन्य को उसमें बिठाया, और फिर स्वर्ण की मूठ वाला चमर से जो है उनको चमर किया, सोने की मूठ वाला चमर, चमर से इनको चमर डुलाया और पंच पुष्पहार से श्री चैतन्य की पूजा की। पांच प्रकार के फूलों का हार बना करके श्री चैतन्य को पहनाया। ये सब मन में किया है, बाहर से कुछ नहीं है। बाहर से क्या देखेंगे कि वो अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं, कुछ भी नहीं है, ये मन में वो सब कुछ कर रहे हैं। इनकी सेवा से प्रसन्न होकर श्री गौरांग ने वो हार वापस श्रीनिवास को पहना दिया। हरि बोल। तो मन में ही जो है ऐसा हुआ कि श्री गौरांग इनकी सेवा से प्रसन्न होकर अपना हार उतार करके श्रीनिवास को पहना देते हैं। वो जब पहनाया तो ये जो है इनका ध्यान भंग हो गया। इतना हर्ष आशा नहीं की थी कि श्री चैतन्य जो है इतनी कृपा करेंगे मेरे ऊपर, अपना हार मुझे जो है पहनाएंगे, तो आशा नहीं थी। तो आशा से अधिक जो है कोई घटना हुई तो क्या हुआ, हर्ष में इनका ध्यान टूट गया। और जब ध्यान टूट गया तो बाहरी चेतना में लौटने पर श्रीनिवास ने वो पुष्पों का हार अपने कंठ में पाया पहने हुए। हरि बोल। बहुत सुगंधित वो हार था। एक दूसरी घटना है श्रीनिवास आचार्य की। ये मणिमंजरी नामक सिद्ध स्वरूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। ये मणिमंजरी हैं तो अपने इस रूप मानसी सेवा कर रहे हैं, तो अपने मंजरी के रूप में कर रहे हैं। इसके पहले मानसी सेवा कर रहे थे तो अपने इस शरीर में, पुरुष शरीर में ही इसी भाव में वो सेवा कर रहे थे, लेकिन अब मणिमंजरी के भाव में राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। और राधा रानी और श्री कृष्ण और गोपियों की रंग लीला को देख रहे हैं। गोपियों ने मणिमंजरी से राधिका को रंग देने और श्याम के विरुद्ध इस युद्ध में उनका साथ देने के लिए कहा कि राधा रानी हारे नहीं। मणिमंजरी को आदेश दिया कि तुम जो है राधा रानी को इतना रंग देती रहो कि राधा रानी हारे नहीं कृष्ण से। उनके घोर युद्ध से धरती हिल रही है, धम धम राधा रानी और कृष्ण के इस रंग युद्ध में। अकस्मात श्रीनिवास का ध्यान भंग हो गया, तो इतनी भूमि हिल रही है धम्म धम्म करके कि इनका ध्यान टूट गया। और जब ध्यान टूट गया तो शरीर में सिर से लेके पांव तक ऐसे विभिन्न रंगों से जो है पूरा शरीर रंगा हुआ उनका। हरि हो, हरि हो। तो इस प्रकार श्रीनिवास आचार्य इनके समाधि धीर समीर घाट पर है। श्रील श्रीनिवास आचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। तो अभी क्या रह गया, सब हो गया। अब एक बहुत अद्भुत घटना है जो पिछले साल हुई थी, और वो मैं आज के दिन ही अगर ना बताऊं तो किस दिन बताऊंगा। पिछले साल 4 मई 2015 को एक बड़ी अद्भुत लीला हुई थी। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। आज हमारे वैष्णव कैलेंडर में तो नहीं है, लेकिन बाहर के कैलेंडरों में क्या लिखा है, बुद्ध पूर्णिमा। तो बुद्ध पूर्णिमा की हमें कोई सूचना नहीं थी, लेकिन कैसे क्या घटना हुई आज के दिवस पर, ये 4 मई 2015 की लीला है। आज के दिवस पर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु मेरी गाड़ी में बैठकर कुछ कार्यवश नेहरू प्लेस नाम के स्थान में जा रहे थे। अब गाड़ी जिस समय मंदिर से बाहर निकल कर संत नगर के स्थान से होकर निकली, उस समय पास में बुद्ध विहार है, इधर बुद्ध विहार है, बुद्ध देव के अनुयायियों द्वारा स्थापित बुद्ध विहार नामक एक मठ दिखाई दिया। तो गाड़ी वहां से निकली। उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। गाड़ी के अंदर लगी हुई मशीन के अंदर से मेरी आवाज में जो प्रवचन निकल रहा था, उस प्रवचन में अचानक मेरी आवाज में भगवान बुद्ध से संबंधित अनेक बातें निकलने लगी। हरि बोल। अब जिस समय गाड़ी शहर के घने स्थान में पहुंची, उस समय मेरी आवाज में ये बात निकली, भगवान बुद्ध ने एक राजा के पुत्र रूप में जन्म लिया। राजा ने पुत्र को सभी प्रकार के सुखों में पाला और राजा ने यह भी प्रयास किया कि उनका पुत्र किसी भी व्यक्ति को कष्ट की स्थिति में ना देखे। परंतु एक दिन बुद्धदेव रथ में बैठकर शहर को देखने के लिए महल से बाहर निकले, जहां उन्होंने पहली बार देखा कि कोई व्यक्ति बूढ़ा है। पहली बार अनुभव हुआ कि बुढ़ापा भी आता है। और फिर कोई व्यक्ति को देखा बीमार है, तो पहली बार अनुभव हुआ कि बीमारी भी होती है। फिर कोई व्यक्ति को देखा मर गया है, तो पहली बार पता चला कि मृत्यु भी होती है। इस प्रकार उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि संसार में लोग दुख भोग रहे हैं। ये बात तो मशीन के अंदर से मेरी आवाज में निकली, परंतु एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि आज सोचा ही नहीं था कि आज कौन सा दिन है। इसके पश्चात एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। प्रद्युम्न प्रिया प्रभु गाड़ी से उतरकर नेहरू प्लेस के स्थान में कुछ कार्यवश रुक गए और प्रदीप ड्राइवर गाड़ी को चलाते हुए श्रीमान प्रदीप अग्रवाल के कार्यालय में गया। उस कार्यालय में प्रदीप को भगवान बुद्ध का एक अत्यंत सुंदर चित्र दिखाई दिया और उसे पता चला कि आज बुद्ध पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध दिवस है, जो भगवान बुद्ध के आविर्भाव का पवित्र दिवस है। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि भगवान बुद्ध के आविर्भाव दिवस पर बुद्ध विहार नामक स्थान से मशीन के अंदर से मेरी आवाज में भगवान बुद्ध के ही विषय में प्रवचन निकलने लगा, जिसमें प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने और प्रदीप ड्राइवर ने, इन दोनों ने मुझे इन सभी घटनाओं की सूचना दी। उस समय श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसे अद्भुत घटना योग को देखकर मैं और मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। बुद्ध पूर्णिमा की सूचना हम लोगों को नहीं थी। यहाँ एक समझने की बात यह है कि चूंकि भगवान बुद्ध ने समय की आवश्यकता के अनुसार उस समय के लोगों के लिए एक ऐसा सिद्धांत स्थापित किया जो वेदों के विरुद्ध है, अतः हमारे वैष्णव कैलेंडर में भगवान बुद्ध के आविर्भाव दिवस की सूचना नहीं दी जाती है। यद्यपि आज के दिवस पर हमारे वैष्णव कैलेंडर में कुल मिलाकर 6 त्यौहार हैं, जिनकी चर्चा आज प्रातःकाल ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में हुई थी। परंतु बुद्ध देव को भगवान समझते हुए भी हमें ना तो पता चलता है कि उनका जन्म दिवस किस दिन होता है और ना ही हम जानने का प्रयास ही करते हैं। परंतु श्री कृष्ण ने घटना का एक ऐसा योग बनाया कि हमें बुद्ध पूर्णिमा की सूचना ना होने पर भी एक ऐसी लीला हुई जिसमें हमें पता चला कि श्री कृष्ण ने ही बुद्ध देव के रूप में अवतार लिया था। हरि बोल। यद्यपि हमने बुद्ध देव के अवतार का उत्सव नहीं मनाया, परंतु श्री कृष्ण ने फिर भी हमें इस पवित्र दिवस पर अपने इस अवतार का स्मरण कराया। श्री कृष्ण के द्वारा हुई ऐसी अत्यंत अद्भुत लीला को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। मतलब ऐसी लीलाएं होती हैं हम लोग समझ नहीं सकते, अचिंत हैं, पहले से कुछ कल्पना भी नहीं होती है कि क्या होने वाला है और कैसे होता है, ये सब आश्चर्य की बात है। तो अभी हमारे पास 15 मिनट का समय है, अभी 15 मिनट का समय है, तो आप लोगों के साथ हम कुछ चर्चा करेंगे। आप लोगों की ओर से कोई चर्चा है या कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूंगा?
ये जो प्रभु जी ने घटना योग बताया था तो ये भी हमें याद नहीं था, और एक प्रूफ था वो कई महीने से जो है रखा हुआ था जो चेक नहीं हो पा रहा था, तो कल बहुत तीव्र गति से चेकिंग किया तो उसी में ये लीला भी आ गई, तो याद आया कि पिछले नरसिंह चतुर्दशी के बाद ही ये घटी थी घटना आज के दिन, तो ये भी भगवान का ऐसा योग है कि स्मरण करने के लिए मौका मिला हमको इस लीला का।
चित्रंजन